ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के पिपलाज में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए गुजरात के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र 375 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा उत्पादन का ये पहला संयंत्र होगा जो हरित भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। इस चरण में 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दायर किए हैं। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जबकि पहले चरण में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 22 लाख से अधिक मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं और 47,000 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। इस दिन कुल 9,70,25,119 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की विकास यात्रा में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों द्वारा किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कामना की कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देश की शांति और समृद्धि में योगदान करते हुए प्रगति करते रहेंगे। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन 8,44,50,000 टन पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष अक्टूबर में 7,85,70,000 टन था। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक कोयला उत्पादन 53,74,50,000 टन हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 50,65,60,000 टन की तुलना में 6.1% अधिक है। मेट्रो शहरों में वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य में 62 रुपए की वृद्धि हुई है। तेल विक्रेता कंपनियों ने बढ़ी कीमतों की घोषणा की है, जो आज से लागू हो गई हैं। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त शुरू कर दी है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच अप्रैल 2020 में हुई झड़प के बाद इस क्षेत्र में गश्त बंद हो गई थी और करीब 4.5 वर्ष के बाद दोबारा शुरू हुई है। देपसांग में भी सैनिकों की गश्त जल्द शुरू होगी। पिछले महीने राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ताओं के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई थी। कल दीपावली के अवसर पर भारत और चीन के सैनिकों ने चुशुल मोल्दो, दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग के पास और कोंगला सहित अनेक स्थानों पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करें। डॉ मांडविया ने कहा कि ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और संगठनों को विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए दिए जाते हैं।
यह केवल एक पुरस्कार ही नहीं, बल्कि हमारे युवा साथियों द्वारा राष्ट्र की प्रगति और सामाजिक कार्यों में उनके द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान है। उन्हें यह ज्ञात करने एक माध्यम है कि आपको स्वयं के अंदर की चेतना को जागृत कर भारत के एक बेहतर नागरिक के रूप में स्वयं को प्रस्थापित करते हैं।
पुरस्कार के रूप में पदक, प्रमाण पत्र और 1,00,000 रुपए नकद तथा संगठन के मामले में 3,00,000 रुपए नकद दिए जाते हैं। 2022-23 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। आज से 15 नवम्बर तक आवेदन किया जा सकता है। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 235 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक 5 जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। आकाशदीप ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।